पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
अब यज्ञ से क्या बचेगा? जैसे गीता जी, जैसे हम पूर्ण यहां पांच यज्ञ होती हैं, जब ये सत्संग समागम होता है, वैसे तो यहां प्रतिदिन ही पांच यज्ञ चलती रहती हैं। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं और इन पांचों यज्ञ में वो सहयोग देते हैं। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। तो यहां पर पांचों यज्ञ होती हैं। तो सबसे जैसे धर्म यज्ञ होती है तो उसमें हम किसी का 10 रुपए, किसी के 100, किसी के 1000, किसी के 50,000 ऐसे दान होता है। तो उसके उससे फिर यहां पर अखंड भंडारा चल रहा है। यहां पुण्यात्मा परमात्मा चाहने वाली या दुखी आत्मा अपने जो दुख है उनको निवारण करने के लिए आती हैं और यहां आकर के वो बड़ी प्रेम से आहार करती हैं। प्रभु का भक्तों का दिया हुआ दान जो प्रभु के निमित्त हो जाता है वो अमृत तुल बन जाता है। फिर यहां परमात्मा की वाणी, भक्तों के सत्संग, भक्तों के श्रवण ध्यान यहां चलते रहते हैं, उससे और ज्यादा उसमें वो अन्न शक्ति युक्त हो जाता है। तो यहां उस कहते हैं फिर धर्म यज्ञ या भंडारा होता है। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, जैसे यहां आते हैं तो परमात्मा ही याद रहता है। आप घर से चलते हो तो भी परमात्मा की याद आपके हृदय में रह रह कर उठती रहती है। सत्संग में जाएंगे, गुरु जी के दर्शन करेंगे, भगवान की वाणी महिमा सुनेंगे, तो एक ये ध्यान यज्ञ कहलाती है। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहां पर दिन रात अखंड ज्योत जलती है प्रभु की, देसी घी की। और यहां सत्संग के दौरान भी बहुत, यानी 200-250 जितने पाठ होते हैं उतनी ही ये ज्योति प्रज्वलित की जाती है देसी घी की। और जैसे 4 दिन चलेगा तो 4 दिन ही वो जलती रहेंगी। 3 दिन, 5 दिन चलेगा, 5ों दिन चलेंगी। 3 दिन चलेगा, वो 3 दिन उतनी ही चलेंगी। उसके बाद 42 ज्योतें हम बाद में कंटिन्यूस रखते हैं। जो जैसे कोई ज्योति हवन नहीं कर सकते, कुछ हवन यहाँ के लिए घी दे जाते हैं तो हम उसको करते रहते हैं। और चौथी यज्ञ प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु के निमित्त हम करते हैं। यह भी एक धार्मिक अनुष्ठान है, यज्ञ है। और पांचवी यज्ञ ज्ञान की, यहां सत्संग सुनाया जाता है और परमात्मा की महिमा का गुणगान गाया जाता है। तो ये सबसे पहले जब हम धर्म भंडारा करते हैं तो प्रभु का भोग निकालते हैं, परमेश्वर को, पूर्ण परमात्मा को प्रतिष्ठित। हम तो उसको प्रतिष्ठित रखते ही रखते हैं, वो तो हमारा है, मूल वही है, कबीर परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म। तो उसके निमित्त हम भोग निकालते हैं। उसके बाद शेष बचे हुए अन्न को हम वितरित करते हैं, सबको भंडारा रूप में या वैसे प्रसाद रूप में। तो यहां यही लिखा कि यज्ञ से बचे हुए अन्न, यज्ञ का अर्थ है शास्त्र अनुकूल साधना। हम शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं और उसमें जो विधिवत साधना की जाती है, जो परमात्मा को भोग लगा दिया गया, उसके बाद शेष बचे हुए अन्न को हम आप सभी को खिलाते हैं। तो कहते हैं यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को खाने से ये सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसी का प्रकरण, क्योंकि तीसरे से संबंधित चौथे में चल रहा है, पांच चौथे अध्याय के अब 31 में को समझेंगे हमने, चौथे के 34 तक पहुंचने के लिए भूमिका बनाई जा रही है। चौथे अध्याय के 34 में श्लोक को समझने के लिए कहानी, ये सारी भूमिका आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अब देखो अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 31 में आ जाइए। ये कुरुश्रेष्ठ अर्जुन यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले पुरुषों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। अब देखो आ गया ना वो परम अक्षर ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र श्लोक नंबर 29 में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, उस ब्रह्म को जानकर और समस्त अखिल पूरे तत्व ज्ञान को समझकर, जिसने वो तत्व ज्ञान समझ लिया, क्योंकि तत्वदर्शी संत की खोज कर ली जिसने, वो पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से जो परिचित होगा वो तो जन्म और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है, तो वो कौन है वो तत्ब्रह्म, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में प्रश्न किया। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये उसी के विषय में लिखा है कि ये देखिएगा यहां गीता अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 31। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ करने वाले पुरुषों के लिए तो ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं, इसका अर्थ ये। अब हम जो प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के 32 में स्पष्ट किया है कि जैसे आप पहले 25 से लेकर और 30 तक जो भी ज्ञान आपको दिया गया एक, तो उसके बारे में बताया है कि जो कुछ तो ऐसे साधना को पाप नाशक मानते हैं, कुछ ऐसे साधना को पाप नाशक मानते हैं, जानकर करते हैं, लेकिन नहीं, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इस प्रकार बहुत से यज्ञ उस पूर्ण परमात्मा की मुख्य वाणी में, उसके मुखारविंद से उनकी वाणी में वर्णन किए गए, विस्तार से वर्णन किए गए। अब देखना, अब आपने 31 सुन लिया, अब 32 पढ़ो, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। अभी इन्होंने कुछ गलतियां की हैं, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ वेद की वाणी कर दिया मुखे, ये लिखा है एवं बहुविधा यगा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षसे। इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ ये ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे इन ब्रह्म का अर्थ वेद लिख दिया, वेद की वाणी में नहीं, वेद का वर्णन ये कर ही रहा है। अब देखो आपको 70वें अध्याय का श्लोक नंबर 23 दिखाते हैं, ब्रह्मणे का अर्थ क्या किया है इन्होंने, ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23। ओम तत्सतीति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्त है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत ऐसे तीन प्रकार का ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म का, सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। इस उसी से सृष्टि आदि काल में ब्रह्मण वेद आदि यज्ञ रचे गए। तो हमने देखना ब्रह्मण का अर्थ सचिदानंद घन ब्रह्म है। अब हम फिर आते हैं उसी स्थान पर, तो यहां ब्रह्मणे का अर्थ जो इन्होंने गलत किया है इसको हम ठीक करेंगे। अध्याय नंबर 4 के 32 में इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी नहीं, ब्रह्मण यानी सचिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा के मुख्य माने उनके मुख्य ज्ञान में, उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित है वो वाणी, वो पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म इंद्रिय और शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जन, उन कर्मों को आपने करना पड़ेगा यानी ये साधना करनी पड़ेगी, भक्ति जैसे दान धर्म इन इस जान इस प्रकार तत्व से जानकर तू उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के ही श्लोक नंबर 33 में आप कंटिन्यूस पढ़ रहे हो 25 से 33 में कहा है कि हे परंतम अर्जुन, दर्व में यज्ञ की अपेक्षा यानी धन आदि से जो होने वाला अनुष्ठान है उससे ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यौन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब इसका भावार्थ सुनो कि अर्जुन जैसे तू वैसे ही जो कोई किसी साधना को करते हैं कोई धन से होने वाले, क्योंकि जैसे भंडारा है हवन है ये धन से होते हैं, द्रव्य से होते हैं। कहते हैं इस यज्ञ को करने से पहले तू अपना ज्ञान समझ और ज्ञान समझने के बाद तेरे ये जो बिना मतलब के अर्थ जो भ्रमणा भटकना है वो सभी अननेसेसरी जो वर्क है पूजा के अननेसेसरी जो कर्म है वो सारे समाप्त हो जाएंगे। ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। अब कहती 34 में कहा है कि वो ज्ञान जो 32 में श्लोक में बताया है कि उस परमात्मा की मुख्य वाणी में, उस पूर्ण परमात्मा की मुख्य वाणी में वाणी के अंदर अर्थात उस परमेश्वर द्वारा अपने ही द्वारा रची हुई उस तत्व ज्ञान की वाणी में जो विस्तार से कहे गए हैं उस तत्व ज्ञान को अब देखो 34 में श्लोक में ये 34वां यदि यहां हो गए धर्म यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को कौन से को जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहे गए उन सब को तू कर्म आदि इंद्रियों मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होने वाले जान उनसे किए जाते हैं, यानी काम करते करते ये सब करने होते हैं, इस प्रकार तत्व से जानकर तू सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तो उसी के बारे में अब कहा है 34 में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को तत्वदर्शनी जानने वाले यानी तत्वदर्शी संत महात्मा ज्ञानी तुझको तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब आपको हम कहां लाना चाहते थे, तत्वदर्शी संत कैसा होता है। अब ये बताया है कि वो अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के प्रथम मंत्र में कहा है कि वो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई, जैसा कि आपको अभी बताया ऊपर को जड़ वाला नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष है और इसके सर्वांग सभी भागों को जो तत्व जो जानता है वो तत्ववेद तत्व से जो जानता है सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात उस परम पद उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए। ये देखिए अब चौथा ना आ जाते हैं हम अध्याय नंबर 15 का ही श्लोक नंबर 4 इसमें लिखा है इसमें चलो थोड़े से दोनों तीनों पढ़ा देते हैं आपको, बुद्धिमान लोग हैं शीघ्र पढ़ जाएंगे। ये तो एक नंबर आपको सुना 15वें अध्याय का, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और अध्य शाखम नीचे को शाखा वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष अविनाशी कहते हैं वे जिसके पत्ते, ये अनुवाद ठीक नहीं किया है फिर भी, इस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष जो साधक जो संत मूल सहित यानी जड़ से लेकर सब पार्टों सहित जानता है सभी भागों से जानता वह है वेद के तात्पर्य को जानने वाला वह तत्वदर्शी संत है। फिर क्या बताया है कि इस संसार रूपी वृक्ष तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण रूपी जल से बढ़ी हुई विषय प्रवाला विषय भोग रूप कोपल वाली देव त्रिया रूपी शाखा है, विषय प्रवाला शाखा ये तीनों गुण रूपी शाखा है नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं है केवल नीचे ऊपर पाताल लोक में ऊपर स्वर्ग लोक में फैली हुई, और मनुष्य लोक में ये कर्मों के बंधन में कर्मानुसार बंधन बांधने वाली ये मुख्य कारण है। मूलानी कर्मानुबंधनी मूल्यानी, जड़े भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, ऊपर और नीचे फैली हुई है। आगे देखो तीसरे में, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वास्तविक में जो इसका विस्तृत वर्णन है वो मैं नहीं जानता, तेरे मेरे विचार काल में, तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में मैं तुझे पूर्ण रूप से नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे इसके आदि और अंत का ज्ञान नहीं है। ये देखिए अध्याय नंबर 15 के श्लोक 3 में, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता है, विचार काल में तेरे मेरे इस गीता के ज्ञान में, क्योंकि न इसका आदि है और न अंत है और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति ही है। इसलिए इस सुविरुद्ध सुविरुद्ध मूलम, ओहो इस अति दृढ़ मूल वाले, ये छोड़ दो, ये इनकी अपनी धारणा है, अति दृढ़ मूल वाले यानी मूल कौन है, सतलोक में सतपुरुष। वो सतलोक तो दृढ़ है, वो कभी नाश नहीं होता, वो सथाई लोक है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंख्य शस्त्रेन, वैराग रूप शस्त्र नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट के, उसके पश्चात अर्थात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट के छितुआ, यानी इसको अच्छी तरह समझ कर फिर उसके बाद वो साधना करते, जैसे वो संत बताएंगे, तत्वदर्शी संत बताते, उसके पश्चात उस, ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को उत्पन्न हुई है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अपुण्यात्मा आपको दास यही बताना चाहता है कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, गीता ज्ञान दाता कहता है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कहा कि मेरे जन्म और क्रम दिव्य है, अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा कि अर्जुन तू पहले, तू और मैं ये राजा लोग पहले भी थे, आगे भी होंगे, ये मत समझ के हम वर्तमान में ही हैं, अर्थात तेरी मेरी और इन सबकी मृत्यु जन्म होता ही रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा है कि मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि लोग और देवता लोग नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। इससे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता नाशवान है, उसका जन्म तो हुआ लेकिन उसके उससे उत्पन्न नहीं जानते कौन, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि जन, क्योंकि जैसे पिता की उत्पत्ति को पुत्र नहीं, संतान नहीं जान सकती, पुत्री नहीं जान सकती, वो तो दादा बताता है। पूर्ण परमात्मा कबीर जी इन ब्रह्मा विष्णु महेश का दादा है और इस परब्रह्म का पिता है, काल का पिता है, और उस वही उसी ने आकर के ये तत्व ज्ञान दिया है। तो यहां क्या बताया है कि उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वही परम अक्षर ब्रह्म के विषय में संकेत है, उसी की पूजा हमने करनी चाहिए, अन्य की नहीं करनी चाहिए। और गीता ज्ञान दाता कहता मैं भी उसी के शरण में हूं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 64 में कहा है कि उस जिसके विषय में मैंने 62 श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत सतान यानी सदा रहने वाले सनातन यानी सदा रहने वाले उस अविनाशी लोक सतलोक को प्राप्त होगा। उस वो मेरा भी इष्ट देव है, दृढ़म इष्ट मम, वो मेरा भी मेरा भी वो एक दृढ़ यानी सुनिश्चित पूज्य देव है, इष्ट माने पूज्य देव। ये देखिएगा अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 64, इष्ट असि मे दृढ़मिति यत वक्षामि ते हितम सर्वगतम ब्रह्म न सर्वगुहतम बुहे सुन्नो मे परमम वचः सर्वघ्वेतम, सबसे गोपत सब गोपनियों से भी गोपनीय अति मेरे वचन रहस्य वचन तू सुन, फिर सुन मेरा अतिशय दृढ़ अतिशय इष्ट माने इष्ट है। अब कौन, अब यहां इन्होंने गलत कर दिया, सर्वघ्वेतम भूय शरणों में परमोच, मेरे सबसे गुप्त वचन और सुन फिर सुन जो मैं तेरे हित में कहूंगा कि इष्ट असी में, मेरा पक्का इष्ट देव पूज्य देव है कौन, इति वही जो आपको 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है। हे भारत तू सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जिसके बारे में मैंने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, वह मेरा इष्ट असी में दृढ़म, वह भी सुनिश्चित पक्का वह मेरा पूज्य देव है। ये तत्वक्षामी ते हितम, ये तेरे हित में कहूंगा मैं और किसी को मैंने आज तक नहीं बताया। और इसी का 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि जब तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए उसके बाद इस सारे उड़ जेड़े नसुल जाकर तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट के फिर उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाकर के फिर लौट कर ये संसार में साधक नहीं आते। और जिस परमेश्वर से सर्व ब्रह्मंडों की उत्पत्ति हुई है, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है जिसने ब्रह्मंडों की रचना की, नहीं तो वो कह देता मैंने रचना की और मैं भी उसी की शरण हूं। तो वहां जाने के बाद जीव का फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। क्या कहां से शुरू किया था सत्संग, साथी हमारे चले गए हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाए, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नाए। जो पहले चले गए हम उनको स्वर्गवासी कह देते हैं, चाहे वो कितना गया हो, हमने ये सोच रखा स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास इतना सिंपल नहीं है जितना कह देना, स्वर्ग की प्राप्ति भी बहुत ही विधि से होगी, लेकिन हमने वो स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमने तो उस सतलोक में जाना है जहां जाने के बाद फिर दोबारा यहां नहीं आना पड़ेगा। वहां जाने के बाद फिर हम पूर्ण रूप से सथाई हो जाएंगे, फिर जन्म मृत्यु नहीं होगी, फिर हमें उस सथाई स्थान मिल जाएगा, अन्यथा उस साहेब की बंदगी बिन, उस साहेब की भक्ति बिना कि ठोर ठिकाना ना। हमने वो पवित्र उस यथार्थ स्थान प्राप्त करना है, वो सथाई स्थान हमने ग्रहण करना है, जहां जाने के बाद हमारा फिर कभी मोक्ष कभी हमारा जन्म मरनी होगा, अर्थात हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। उसके बारे में क्या कहा है, क्यों बोली घर अपना ये ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछतावगी कर ले सोच विचार, क्यों बोली घर अपना ये ना देश तुम्हारे, फिर पाछे पछतावगी कर ले सोच विचार, बिन सतगुरु पावे नहीं घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर सुरत शब्द समा, संख असंखों कोस है तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइयो ले सतगुरु उपदेश, सुन सलहली गैल है गगन मंडल के माही, बिना प्रेम पावे नहीं चाहे करोड़ समाधि लाई, नितानंद लोला के चढ़ो महल मंजारे, बहोर न भव जल आईयो ये सपना संसारी।
होले सुहागण सुरता त्यार मालक घर जाना हे तू तो होले सुहागण सुरता त्यार मालक घर जाना हे तू तो तेरा सुन शेखर बर तार मालक घर हे तेरा सुन शेखर घर बार मालक घर नाले धोले ओड पैर लेकर सोला सिंगार नाले धोले ओड पैर ले कर सोला सिंगार आज नहीं ते तड़के परसों आवेंगे तेरे लनियार मालक घर मालक घर जाना है हे तेरा सुन शेखर बर तार मालक घर जाना है हे तेरा सुन शेखर बर तार तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं विचार मालक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार है तेरा सुन शेखर बर तार मालक घर सतगुरु मारे बानिया हे करते बणज व्यवहार सतगुरु मारे बानिया हे करते बणज व्यवहार बिन डांडी बिन पालड़े हे तोले दिया संसार मालक घर जाना हे तू तो होले सुहागण सुरता त्यार है हे तेरा सुन शिखर बर तार सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो ने अजब बहार मालिक घर जाना है हे तू तो होले सुहागण सुरता त्यार तेरा सुन शिखर बर तार सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो न अजब बहार मालिक घर तो होले सुहागण सुरता त्यार मालिक घर जाना है तेरा सुन शिखर बर तार सत साहे। अब जैसा कि आपने ये वाणी सुनी प्रथम वाणी नितानंद जी महाराज की थी पुण्यात्माओं जैसा कि आपने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से और 31 30 तक सुना 30 तक उसमें यही बताया कि कोई तो किसी साधना से मोक्ष मानता है कोई किसी साधना को अंतिम मान बैठा है नितानंद जी ने कबीर परमेश्वर की वाणी को गहराई से पढ़ने की चेष्टा की पढ़ा लेकिन उनको गुरु केवल विष्णु जी वैष्णव साधु संत विष्णु जी के उपासक ही मिले हुए थे। अब इस वाणी कबीर जी की पढ़ा करते थे वो उसी के आधार से उन्होंने अपनी अपनी जो मिला मिलो का अपना जो जोड़ जुगाड़ करके वाणी बना तो दी लेकिन फिर भी उद्देश्य उनका यही रहा है कि उन्होंने स्वर्ग को ही सच्चा सुख मान रखा था तो इन्होंने यही बताया है कि क्यों भूली गर अपना यू ना देश तुम्हार कबीर साहब ने तो सतलोक की तरफ संकेत किया है नितानंद जी केवल स्वर्ग तक ही जानते थे फिर भी हमने इन संतों के मार्ग से जैसे कोई टीचर 5वीं तक का है कोई 10वीं तक का है तो हमने अब हम 5वीं 10वीं के नहीं विद्यार्थी रहेंगे हम अब फाइनल करेंगे इस विद्या को एमए बीए पीएचडी हम करेंगे। तो उस उन्होंने भी यही बताया है कि जैसे पांचवी कक्षा पास पढ़ना है तो भी तत्परता से पूरी लगन से करोगे तो पास हो पाओगे। इनका भाव ये समझना है। हमने सतलोक जाना है तो भी यही विधि अपनानी है। जैसा क्या बताया है, क्यों भूली घर अपनाइयो ना देश तुम्हार, फिर पाछे आत्मा को कहा जा रहा है, फिर पीछे पछतावेगी तू, कर ले सोच विचार। और बिन सतगुरु पावे नहीं। अब चाहे आप किसी भी संत इष्ट किसी भी इष्ट की पूजा करते हो, गुरु प्रथम बनाना पड़ेगा। कहते राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हें भी गुरु की ने, तीन लोक के वेदनी भाई गुरु आगे अधीन। राम कृष्ण से तो तुम किसी को बड़ा नहीं मानते, परमात्मा कबीर जी बताते हैं, और उन्होंने भी गुरु बनाए। जैसे रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि को से उपदेश लिया, श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी से आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण की दीक्षा, और संदीपनी उनके अक्षर ज्ञान जैसे टीचर होया करें, ऐसे गुरु थे। तो कहते हैं रामकृष्ण से तुम बड़े नहीं हो, रामकृष्ण के पुजारी हो, तुम फिर भी अपने डले ढोरे अपनी मर्जी से साधनाएं कर रहे हो, प्रथम गुरु बनाइए। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन, और तीन लोक के वे धनी गुरु वागाधीन, वो तीन लोक के स्वामी भी गुरु मर्यादा में ही रह करके यहां से पार हो सके, यानी जा सके अपने स्वर्गों को। फिर क्या बताते हैं, बिन सतगुरु पावे नहीं घर अपने की रहा, और संतों शरण लाग कह तो स्वर सब समा। परम संत के पास जाइए, तत्वदर्शी संत के पास जाइए, फिर वो जो मंत्र दे तो उस मंत्र का रगड़ा लगा दे। सुरत शब्द का यही अर्थ होता है। ये सुरत शब्द पता नहीं क्या बना रखे दूसरे पंथों वाले ने, अड़ंगा नौका बस अगर धुन ला लो और धुन पर सुरत लगा लो, नहीं। शब्द का अर्थ मंत्र भी होता है, नाम भी है, सार नाम, सार शब्द, सार नाम, सत नाम, सत शब्द भी इसको कहते हैं। तो ऐसे शब्द माने नाम, जो गुरुजी आपको मंत्र दे उसका सुरत नृत से उसका जाप अभ्यास करना होता है। आगे बताया है कि इसने तो लिखा संख असंखों को सैतरे पति का पिया का देश, क्योंकि इनको ज्ञान तो था ही नहीं। नितानंद जी को भी, ये भी ऐसे भोली आत्मा जिसे गुरु का फंस गए अपना लगे रहे। परमात्मा लिखा है सोलह संख पर हमरा तकिया गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए काटन यम का फंदा। सोलह संख कोष पर हमारा स्थान है, यथार्थ स्थान है, और वहां से हम यहाँ के पुण्य आत्माओं के काल के फंद को काटने के लिए, बंधन को काटने के लिए अपराए सोलह संख कोष से। सोलह संख पर हम रात किया हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए काटन यम का फंदा। काल का बंधन काटन के लिए हमारे सोलह संख को से। लेकिन ये इनकी अनुभव नहीं है, सुनी सुना एक दूसरे के जोड़ के, जैसे रागनी गानी है इधर की उधर जोड़कर बढ़िया रागनी बना देते हैं। लेकिन नितानंद जी ने कहा संख असंखों को से नहीं, परमात्मा ने गिण कर दे रखे है सोलह संख कोष पे। हमरा तकिया हमारा स्थान है, हम गगन मंडल के जिंदा, हम आकाश में घूमने वाले हैं, यहां तक के खाने वाले नहीं है। जैसे यहाँ गांव गांव में मांगते फिर हम, ये महात्मा नहीं है। और हुक्म हिसाबी हम चल आए काटन यम का फंदा। तो यहां क्या बताते हैं, फिर भी हमने इन संतों की वाणी से अपने मूल उद्देश्य की तरफ अपने मन को डाइवर्ट करना है, इसको इधर बदलना है। सुन सलहली गैल है, सुन आकाश में सलहली माने रिपटनी, जिसके ऊपर बहुत मुश्किल से रुका जाता है। गगन मंडल के माही बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि लाए। अब यही परमात्मा भी कहते हैं, जैसे जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं
और बादल आगे सामने आ जाने से अंधेरा छा जाता, सूर्य अदृश्य हो जाता, अव्यक्त हो जाता है। उन बादलों को पवन हवा चलती है तेज, इधर उधर उनको बखेर देती है और प्रकाश सूर्य का स्पष्ट नजर आता है। वो अव्यक्त सूर्य हमें सामने साक्षात हो जाता है, साक्षात्कार होता है। कैसे? जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छे आरे, प्रेम की पवन करे चित मंजन जल कर तेज नयारे। परमात्मा में जब आपका प्यार जागृत होगा, रोम रोम आपके करनान लग जाएंगे, इसके अंदर खड़े हो जाया करेंगे, प्रभु की वाणी सुनकर आंखों से आंसू बहने लग जाएंगी, तो ये प्रेम की पवन चल पड़ी और बीच में जो पाप रूपी कर्मों की बादल छाए हैं, इस प्रेम रूपी पवन से ये छिन्न भिन्न हो जाएंगे। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। ऐसा ही यहां बताया जा रहा है कि बिना प्रेम पावे नीचे क्रोध समाधि ला। अब परमात्मा क्या कहते हैं, होले सुहागण सुरता त्यार तन माल्य गर जाना है। अब देखो, जिस बच्चे का, जिस लड़की का ब्याह नहीं हुआ वह तो कुंवारी होगी, सुहागण नहीं हुई, और जिनका विवाह हो गया वह सुहागण होगी, और जिसका विवाह हो गया वह अपने पति के देश भी घर में भी जाएगी, तो उसको फिर तैयारी करनी होती है। जाने से पहले उसको लगन लग जाती है, मैं केक के सामान तैयार करूं, कि क्या क्या आइटम मुझे चाहिएंगे जो वो आवश्यक है वहां ले जाने के लिए, तो उसको चिंता बन जाती है और घर वाले भी उसका सहयोग देना प्रारंभ कर देते हैं। होले सुहागण सुरता आत्मा, त्यार तुझे अपने परमात्मा के घर जाना है, और तेरा सुन शिखर बरतार तन माल्य घर जाना। सुन शिखर यानी सबसे सुन, सबसे आखिर में, शिखर में, टॉप मोस्ट प्लेस पे, वहां तेरे पति का घर है सतलोक में। फिर क्या बताते हैं कि नाले धोले ओड पैर लेकर सोला श्रृंगार, नहाना क्या है सत्संग रूपी दरिया में, आकर के अपने अंतकरण के मैल को साफ करना है। और क्या सोला श्रृंगार क्या होते हैं, जैसे सील संतोष विवेक अक्षमा भाव भक्ति और साथ में दस धा भक्ति, ते कुल मिलाकर तेरे सोलह श्रृंगार होंगे, क्योंकि पति को वही लड़की अच्छी लगती है जो अपना स्वरूप श्रृंगार के चलती है। ऐसे ही परमात्मा को हम तभी अच्छे लगेंगे जब ये हमारे ऊपर सब गहने होंगे, सील संतोष विवेक अक्षमा आधीनी नम्रता है, दान का भाव, तो वो ये हमारे गहने हैं भक्तात्मा के। तो ये आभूषण हमने पहन रखे हैं या डाल रखे हैं, ये ग्रहण कर रखे हैं, तो परमात्मा ने हम अच्छी, हम प्यारी आत्मा लगेंगी। आज नहीं तो तड़के परसों यानी कल परसों तेरे आवेंगे लड़िहार, कभी भी तेरी मृत्यु हो सकती है, अर्थात तेरे कोई लेने के लिए वो यमदूत आएंगे, अगर तू सत साधना करेगी तो लेने के लिए प्रभु आएंगे। कहते हैं तेरे साथ की कितनी जाली तो क्यों लारी वार, और गुड़िया खेल जन्म को आदियत ने लाया नहीं बिचार। जैसे पुराने पहले हम जब छोटे छोटे थे उसमें क्या होता था, वैसे तो ग्राम गांव में अब तो इतना नहीं रहा, पहले ये बेटियां पढ़ा नहीं करती थी, लड़के भी बहुत कम ही पढ़ा करते थे, तो ये लड़कियां जब तक खेतों में सहयोग देने का काम में सहयोग देने योग्य नहीं होती, बालक सी होती थी, तो अपने खेल में लगी रहती थी, तो वो सुनती थी कथाएं, आप लोकवेद सुनती रहती थी। जैसे लड़की का जो जवान लड़की हो जाती थी तो उसके कपड़े बनवाया करते थे, दूसरे बोला करते उसको दहेज कहो, तो उसको दहेज बनाते थे, तो उसमें काकी ताई दादी का आकृति कि उन्होंने बताया है 40 तगलियां की है 20 पछलियां की, 40 कपड़े यानी अगले वाल अगलियों की 20 पछलियां की, किस तरह हुआ करे पता नहीं इतना तुमने, तो उसको वो बनाती थी वो, तो लड़की जो उनके गारमेंट टेलर लड़की जो विवाहित हो चुकी थी जिसको भेजना था दहेज बनाया जाता, उसके कपड़े सीलन आया करते घर पर, तो उनके छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े वह छोटी सी बेटी जो होती थी 8-7 वर्ष की 5-6 साल की, तो
तो वो क्या करती, उन टुकड़ों को इकट्ठा करके वो सुने सुनाए ज्ञान से रख लेती थी। ये 20 टुकड़े काट करने बोले ये अगलियां की पछलियां की, 40 टुकड़े नारे दड़ी ये अगली अगलियां की तील कपड़े यानी सूट, और गठड़ी बांध के और पांडव रख लेती है कांत में अपने लोगों के। उसमें से कोई दूसरा भाई बहन दो चार उसके चीछड़े निकाल लेता वो इतनी कितनी कत्तर सी, तो वह रो और पा पीटा है मेरे 40 थे 5 को ना रो बुरी तरह। तो उसे कोई भाई बहन बड़ा या माता चाचा था वो पूछे बेटी क्यों रो रही है, वह रो और बुरी तरह सांस नहीं ले रही, अन्य कह मेरी तील काट ली, तील निकाल ली, मेरे सूट निकाल लिए, वो इन चीथड़े ने सूट मान रही है। तो ऐसे ही जब उस वह बेटी बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, फिर वह गुड्डा गुड़िया तो नहीं खेल रहे, वो उस खेल को नहीं खेल सकती जिसको पहले सच्चा मानकर रो रही थी, बुरा हाल कर रही थी, उनको इतने इतने चीथड़ों को वो सूट मानती थी। ऐसे ही जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं है, तब तक हम यहीं के संतान और संपत्ति रूपी खिलौनों से खेल रहे हैं, गुड़िया रूप वाला खेल खेल रहे हैं। जब हमें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा फिर इसको हम नहीं खेल सकते। या तो आपको ज्ञान ही नहीं हुआ है, अभी आप इतने मैच्योर आपके थॉट्स नहीं हुए, आपके विचार इतने दृढ़ नहीं हुए हैं, और जब ये दृढ़ हो जाएंगे फिर आप एक का चीज मांगोगे, परमात्मा पीछा छुटवा दे, कोट जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस पुकारे। ये बातें आपके हृदय में दरी जाएंगी। फिर क्या बताते हैं, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेल लेती खिलौना तो खेलते तने जन्म खो दिया लाया नहीं विचार। सतगुर हमारे बाणिया हमारे सतगुर सौदागर हैं, ये करते बनज बिहार और बिन डांडी बिन पालड़ा यू तोल दिया संसार। बगैर किसी तराजू के किसी तुला के परमात्मा ने तत्व ज्ञान से तू सब कुछ तेरा तोल कर धर दिया, अब तेरी इच्छा जैसे तू चाहता है कर। सुन शिखर में सेज पिया की वहां संस्कर ले प्यार, जो पुण्य आत्मा संघर्ष करके यहां से निकल गई परमात्मा जाते ही सीने से लगाएगा उस प्यारी आत्मा को, और कहते ही वहां जाकर के उस आनंद को लूट, ये नकली झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ कोद। बोलो सतगुरुदेव कर जोरू विनती करू धरू चरण पर शीश, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम, कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं मैं, तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यो ही रहूं जो देवो सुख। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो, कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात, गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको ना, तुमरे बिसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंस मुनि नारदा तिन के हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बोध किए, करत न मनी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूं, बौर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्षक भरे विकार। तुम दाता दुख बंजना, मेरी करो संभार। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वारे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने। उनसे कबू ना छूटता, फिरता चारों खानी। चार खानी में भ्रमता, कब होन लगता पार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय। धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध। ओए दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए। मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि के रूठ त्या, गुरु की शरण में जावे। कहे कबीर गुरु रूठ गए, तो हरि ना होत सहाय। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के, हे भनक पड़ेगी कान। सतगुरु के दरबार में, मेरी थर थर कांपे दे। ना जानू किसी बात पर, मारो टूट न जावे ने। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछतावोगे, प्राण जाएंगे छूट। परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर बंदी छोड़ जी की असीम कृपा से ये 5 दिवसीय समागम चल रहा है। ये समागम किस उपलक्ष्य में चल रहा है? फाल्गुन द्वादशी, फाल्गुन द्वादशी विक्रमी संवत 1784 सन 1727 को पूर्ण परमात्मा कबीर देव अल्लाहु अकबर एक जिंदा महात्मा के रूप में संत गरीबदास जी 10 वर्षीय बालक संत गरीबदास जी को गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा प्रांत के अंदर खेतों में जंगल में सशरीर आकर के मिले थे। और उस परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी महाराज को अपने लोक का तथा अन्य 21 ब्रह्मांड 7 संघ ब्रह्मांडों का विशेष विवेचन दिया था, आंखों दिखाया था, अपनी आंखों देखा हाल उस परमेश्वर की महिमा का और सभी ब्रह्मांडों की स्थिति का। संत आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में वर्णन किया, जिसके आधार से आज हम उस परमेश्वर को पहचान सके। काल भगवान ने जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसने परमात्मा का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त कर रखा था, यथार्थ भक्ति मार्ग को नष्ट कर रखा था। स्वयं परमेश्वर आते हैं, इस तत्व ज्ञान को आप ही प्रचार करते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को खुद ही बता सकता है, अन्य केवल अटकल लगा सकते हैं। वो अटकलें पहले लगाई जा चुकी थी, जैसे पुराणों में जिन्होंने वेदों को ढंग से नहीं समझा, पुराणों में अपनी दंत कथाएं कहीं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा लगा रखा था, ऐसे ही अन्य पंथों वालों ने भी अपनी अपनी अटकल से सृष्टि रचना के विषय में जानकारी दी हुई थी, जो बिल्कुल अपूर्ण थी, व्यर्थ थी। परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी महिमा को आप ही उजागर किया। वो परमात्मा स्वयं आते हैं या अपनी किसी प्यारी आत्मा को अपनी शक्ति से उसको तत्व ज्ञान प्रदान कर देते हैं, जिसके आधार से फिर वो प्यारी आत्मा परमेश्वर की रजा से ही उसकी महिमा का गुणगान कर सकती है और करती है, और उसके कारण फिर बहुत सी पुण्यात्माएं परमात्मा को पहचान जाती हैं, अपना कल्याण करा देती हैं। जैसा कि आपको बताया था कि गरीबदास साहिब जी की के आत्मा को शरीर से निकालकर परमेश्वर सतलोक लेकर गए थे सन 1727 में, और उसमें उनको ऊपर की सब महिमा सब लोकों का विवरण अपनी आंखों गरीबदास साहब जी को अपनी आंखों से दिखाया था, फिर वापस उनको शरीर में छोड़ दिया था। फिर गरीबदास साहब जी ने अपनी महिमा का परमेश्वर की महिमा का एक कलम तोड़ विवेचन दिया है। उस अमृतवाणी को का आनंद अब हम आप उठाएंगे। गरीबदास साहिब जी ने अपने पारक के अंग में लिखा है, न्योली नाद सुभान गति लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जान जगदीश है विसने व्यापै शेष। हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़, कौवा उड़ उड़ जाते हैं खाते मसाहाड, हंस दशा तो साधु है सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबानी चोगे चढ़त नवेला रंग, दर्स परस नहीं अंतरा रोमी वस्त्र बीच, पारस लोहा एक डग पलटत नहीं अबीच, चार मुक्ति बैकुंठ बट सप्तपुरी सैलान, आगे धाम कबीर का हंस न पावे जान, मौन रहे मग्नालय है मार्ग बंकानी बंकी बाट, सुन शिखर गढ़ सोरंग है कर सतगुर से साट, ग्रीपल से तीपल ना मेले भौ मिले नहीं भौ, बिष्ट किया महबूब का परमेश्वर की सो, ग्रीप तम तुम बाजल में बेचल्या बाहर भीतर नीर, पानी से पाला भया एक सिंध है नीर, रिंचक नाम निनावे है सुरच नृत के मध्य, हद्दी भूले हद में बेहद्दी बेहद, लोर लहर उठे सदा कारी गटा सुफेद, ब्रह्मा अक्षर क्या लिखे भीगे चारों भेद, काया काशी मनमग हर दोहों के मध्य कबीर, काशी तजमग हर गया पाया नहीं शरीर, काया काशी मनमग हर अरस कुरस बीच मुकाम, जहां जुलाहे घर किया आज अंत विश्राम, श्वेत ग्रीव श्वेत वर्ण शुभ रंग है नगरी अकल अमान, तन मन की तो गम नहीं निज मन का स्थान, निज मन ऊपर ब्रह्म पद राग रूप रघुवीर, दूजे की तो गम नहीं तावा मैल कबीर, निज मन से ती मन हुआ मन से ती तन देहे, देही में कछु ना हुआ नाहक लाई खे, बेरा ग्री बेरा साटे बेचिया बैरागर सुल्तान, मालिन को जाना नहीं बेबुद्ध खेचा तान, शेर बेर पलड़ चढ़े एक पेड़ एक पड़ा भोमाही, मालन और सुल्तान को हलकारे ले जाही, ढाई लाख की पावड़ी एक पैसे का बेर, देख अदम सुल्तान को कैसे डारी मेर, ग्रीब नौ लख नानक नाद में दस लख गोरख तीर, लाख दत्त संगी सदा चरणों चरच कबीर, ग्रीब नौ लख नानक नाद में दस लख गोरख पास, अंत संत पद में मिले ये करोड़ तेरे रविदास, ग्रीब रामानंद से लख गुरु तारे सिसके भाई, चेलों की गिनती नहीं पद में रहे समाय, ग्रीब खोजी खालक से मिले ज्ञानी के उपदेश, सतगुरु पीर कबीर हैं सबका हूं उपदेश, ग्रीब दुर्वासा और गरुड़ सो कीन्या ज्ञान संबोध, अरब रामायण मुख कही बाल्मीक को सोध, फिर पांडों की यज्ञ में संख पचायन टेर, द्वादश कोट पंडित जहां पड़ी सबन की मेरे, ग्रीब करी कृष्ण भगवान को चरणामृत सो प्रीत, संख पचायन जब बजा लिया द्रौपदी सीत, ग्रीब द्वादश कोट पंडित जहां ब्रह्मा विष्णु महेश, चरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष, ग्रीब बाल्मीक के बाल समय नाही तीनों लोक, सुरनन मुनि जन कृष्ण सुदेह पांडव पाई पोख,